Really, thank you. Thank God for this wonderful morning. Again, God has added to our life.
ये अद्भुत सुबह जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ी है उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ।
Really, I thank God. You know, every day nowadays I have been thanking God that it is, you know, God's grace upon our life and my life.
और इन दिनों में हर सुबह मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसके अनुग्रह के लिए मेरे जीवन पर और हमारे जीवन में।
Yes, and as we sang that song, that, you know, I have tasted the Lord is good.
और जैसे हमने वो गीत गाया कि मैंने चक्कर देखा है कि परमेश्वर भला है।
Because I in myself, I am nothing. I consider myself as the least of all.
क्योंकि मैं तो खुद कुछ नहीं हूँ और जैसे पौलुस कहता है मैं सब में सबसे छोटा या सबसे कम हूँ।
Because every day I just put myself and I ask God, God give me grace to live every day according to Your will.
क्योंकि हर दिन मैं परमेश्वर से बस यही मांगता हूँ कि प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे कि तेरे इच्छा के अनुसार मैं अपना जीवन व्यतीत करूँ।
You know, one thing what I thought was like this.
और एक चीज जिसके बारे में मैं सोच रहा था वो ये थी।
I can hire people to do my work or do my job.
और मैं लोगों को काम पर रख सकता हूँ ताकि वो मेरा काम करे।
And those and the people whom I hire, they will do whatever I ask them because I pay to them, and they will do it.
और क्योंकि मैं उन लोगों को पैसा दे रहा हूँ, मैं जो कुछ उनसे करने को कहता हूँ, वो जरूर करेंगे।
But one thing which they cannot do for me is.
पर एक चीज जो वो मेरे लिए कभी नहीं कर सकते।
That is, I cannot hire them to carry my cross.
मैं किसी को भी इस काम के पैसे नहीं दे सकता, इसलिए काम पर नहीं रख सकता ताकि वो मेरा क्रूस उठाए।
They cannot carry my sickness. They cannot carry my pain.
वो मेरी बीमारी या मेरे दुख दर्द को नहीं उठा सकते।
This is a thing where I need to understand and I need to carry my cross and my and I need to go to the Lord every day for that.
और ये एक चीज है जो मुझे समझनी है, मेरे क्रूस को उठाकर हर दिन परमेश्वर के पास जाना है।
It is something like this that I need to be humble in my spirit.
और मुझे मेरी आत्मा में नम्र होना है।
And when I say I need to be humble in spirit, it is not that I show it in my outward attitude.
और जब मैं कहता हूँ मुझे अपनी आत्मा में नम्र होना है, ये उसको उसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने बाहरी चाल चलन में उस चीज को प्रकट करता हूँ।
In other words, that I pretend in that manner which I may show it outwardly.
इसका मतलब मैं बाहर से कोई ढोंग या कोई नाटक नहीं करता ये दिखाने के लिए कि मैं नम्र हूँ।
It is something like it is the inside attitude which I reflect and which God sees.
ये मेरा अंदरूनी एक स्वभाव है जो मैं प्रदर्शित करता हूँ और जिसको परमेश्वर देख रहा है।
This is a need which I understand, you know, I understand it and I need to learn about it every day.
और ये एक मेरी जरूरत है जिसे मुझे समझना है और हर दिन इसके बारे में सीखना है।
And it is not only learning about it every day. I need to grow in that every day.
और यही नहीं कि मैं उस चीज के लिए सीखूं, पर उस चीज में हर दिन मेरी बढ़ोतरी हो या मेरी उन्नति हो।
Yes, and it is something like where I need to understand about myself how I am in fellowship with my Lord.
और एक चीज जो मुझे सीखनी जरूरी है कि कैसे मेरी और मेरे प्रभु के बीच संगति है।
Yes, there is a verse in Isaiah chapter 2, verse 11.
और यशया उसके दूसरे अध्याय के 11वें वचन में।
And it is written like this that you know a proud man will be brought low, arrogant man will be humiliated.
और वहाँ लिखा है क्योंकि आदमियों का की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा।
See, when I have proud in me, an attitude like that. And God will never want it in my life to be like that.
और जब मेरे अंदर घमंड है या ये घमंड भरी आंखें हैं तो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि मेरे जीवन में ये हो।
And God has the power over everything and He knows how to deal with that.
और परमेश्वर सारे चीजों पर विराजमान है, सर्वशक्तिमान है, वो जानता है इस ऐसे प्रकार के लोगों से कैसे रहना है।
Because I also remember at times when I used to be earlier in my early days of my life.
क्योंकि मुझे याद है मेरे जीवन के शुरुआती दिनों में
how I used to live earlier and I used to be proud about myself in many areas which God showed me later.
और मेरे जीवन के एक समय में मैं बहुत चीजों पर घमंड रखता था, मेरे जीवन के अलग क्षेत्रों में मेरे पास बहुत घमंड था, और जिसको परमेश्वर ने मुझे बाद में दिखाया.
And especially when I am at home, when I am with my family, it is how I live every day with them.
विशेषकर जब मैं अपने घर में होता हूँ, अपने परिवार के साथ होता हूँ, तो दिन प्रतिदिन मैं उनके साथ कैसे रह रहा हूँ.
Many of the times I used to always expect my wife to do everything, and I used to feel that she is the one who takes care of the house, and it is her job to do all the housework.
कई बार मैं अपने पत्नी से यही उम्मीद करता था कि सारा काम वही करे, और मैं यही सोचता था कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसने घर का पूरा काम करना चाहिए.
And I got no work at home.
और मुझे घर पे कोई काम नहीं करना है.
But later on, I realized that is not what I need to do. That is not the thing. That is not what I live.
पर बाद में मुझे इस बात को समझ में आया कि ये इस प्रकार का जीवन मुझे नहीं जीना है.
Yes, then later on, I understood that, and I started supporting her in whatever way I can and I could do.
फिर इस चीज को समझने के बाद मैं जिस प्रकार से भी उसकी मदद कर सकता था, मैंने मदद करना शुरू किया.
It is again the Holy Spirit which we allow to work inside us and to do the work to understand the way we need to grow.
और पवित्र आत्मा हमें दिखाता है हमें किस प्रकार बढ़ना है अगर हम उसको अनुमति दे तो.
Yes, but if I deal in a proud way and if I think that I am everything, then I will never be able to grow in this area.
पर अगर मैं घमंड करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं इस क्षेत्र में कभी भी उन्नति नहीं कर पाऊंगा.
Because opposite of humble is proud.
क्योंकि नम्र के बिल्कुल विरुद्ध है घमंड करना.
And God never likes that. In any ways.
और परमेश्वर किसी भी प्रकार से घमंड को बर्दाश्त नहीं करता, पसंद नहीं करता.
I ask every day to the Lord that in the areas wherever I am still not yet humble, God, you teach me and lead me, and I want to learn more.
और मैं हर दिन परमेश्वर से मांगता हूँ कि प्रभु, जिन क्षेत्रों में मैं आज भी घमंडी हूँ, तू मुझे दिखा और मेरी सहायता कर, और मैं सीखना चाहता हूँ.
No, that is a verse in Psalms chapter 51, which everyone of us know about it.
और भजन 51 में एक वचन है जिसको हम सब जानते हैं.
It is how David put forth about what God wants.
और इस वचन में दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की मंशा क्या है.
In other words, I would say, what is God looking at?
दूसरे शब्दों में कहूँ तो परमेश्वर किस चीज की खोज कर रहा है.
And it is in Psalms chapter 51 verse 17.
और ये है भजन 51 उसका 17 वचन.
That it is written like this, the sacrifice of God are broken spirit.
और यहाँ लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है.
A broken and contrite heart.
एक टूटा और पिसा हुआ मन.
Something which I am totally broken and totally crushed, totally I submit myself or resubmit myself to the Lord.
जिसका मतलब मैं पूरी तरीके से टूटा हूँ और पिसा हुआ हूँ और फिर एक बार मैं परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करता हूँ.
This is how God wants me to come to Him.
परमेश्वर चाहता है कि मैं इस प्रकार उसके सामने आऊँ.
Yes, and then it says, so God, you will not despise. God will never despise a heart like that.
और उसके आगे लिखा है कि परमेश्वर ऐसे मन को कभी तुच्छ नहीं जानेगा.
A heart that wants to learn from God.
एक हृदय जो परमेश्वर से हर समय सीखना चाहता है.
A heart that wants to be close in fellowship with God.
एक मन जो हर समय परमेश्वर के पास संगति में चलना चाहता है.
Yes, a heart like that which always desires the Lord always in one's life.
और एक ऐसा मन जो हर समय सिर्फ और सिर्फ प्रभु की अपेक्षा करता है.
There is a one incident about Job which I read.
और आयुब के जीवन में एक घटना थी जिसके बारे में मैंने पढ़ा.
And there Job 38.
और आयुब उसके 38वें अध्याय में.
There actually God is speaking to Job.
और वहाँ परमेश्वर आयुब से बात कर रहा है.
And where is telling Job about himself.
और जहाँ परमेश्वर आयुब को अपने आप के बारे में बता रहा है.
And one verse there in Job 38 verse 4.
और अय्यूब 38 उसका चौथा वचन,
there it says there God is telling, where were you when I laid the foundation of the earth, tell me if you have understanding.
और वहां परमेश्वर कह रहा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था, यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे.
Yes, whether you have understanding, tell me.
अगर तू है समझदार तो मुझे उत्तर दे.
And then God tells lots of things from that verse from chapter 38 to 39.
और 38 और 39 अध्याय में परमेश्वर ऐसे कई चीजों को बताता है.
God tells about himself.
परमेश्वर अपने आप के बारे में बता रहा है.
God tells about the creation, what he created, how he made things.
परमेश्वर बता रहा है कि कैसे उसने अलग-अलग चीजों का निर्माण किया.
And the question to Job was, do you understand?
और जो प्रश्न परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा था, क्या तू इन सब चीजों को समझता है?
No, Job, when he told what he spoke.
Brother, can you repeat? I lost your voice.
When Job heard all what God spoke.
और जब अय्यूब ने सारी चीजों को सुना जो परमेश्वर कह रहा था.
You know, he just comes down and humbles himself in the sight of the Lord.
फिर वो नीचे आता है और परमेश्वर के दृष्टि में अपने आप को नम्र करता है.
Job in chapter 40 verse 3 and 4.
अय्यूब उसका 40 अध्याय और तीसरा और चौथा वचन.
You know what he says? In verse 4 he says, indeed I am completely unworthy.
और चौथे वचन में अय्यूब कहता है, देख मैं तो तुच्छ हूँ या अयोग्य हूँ.
In another translation it says, behold I am insignificant.
और दूसरे एक इसमें भाषांतर में लिखा है कि मैं तुच्छ हूँ.
Insignificant means I am nothing, very 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 small or minute, which I am nothing, in other words.
तुच्छ या उसका दूसरा अर्थ ये है कि मेरा कोई भी महत्व नहीं है, मैं कोई भी नहीं हूँ.
And then later on he says, you know, how could I reply to you?
और उसके आगे वो कहता है, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ?
How could I reply to you?
मैं कैसा तुझे उत्तर दूँ?
And finally he says one thing after that.
और उसके बाद वो एक चीज कहता है.
He says, I put my hand over my mouth.
और वो कहता है, मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूँ.
Yes, to silence myself.
और मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूँ, अपने आप को शांत करता हूँ.
This is the state where you know Job comes to when he could understand God in his life more and more.
और ये एक ऐसा पल था जहाँ अय्यूब ने परमेश्वर को अपने जीवन में और नजदीकी से समझा.
That is what I also need to learn God more and come into the silence of my, come to that silence.
और इसी प्रकार मुझे भी परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना है और इस शांत होने की दशा में आना है.
Yes, and another person I read about is in the New Testament.
एक और व्यक्ति जिसके बारे में मैंने पढ़ा वो नए नियम में है.
And this person was so great that he was anointed in his mother's womb itself with the Holy Spirit.
और ये व्यक्ति इतना महान था कि उसके माँ के गर्भ में होने के समय ही पवित्र आत्मा से वो अभिषिक्त था.
Yes, he was anointed with the Holy Spirit.
वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त उसको प्राप्त हुआ था.
He was none other than John the Baptist.
और वो था योहन्ना बपतिस्मा करने वाला.
In Mark chapter 1 verse 7 we read like this.
हम मरकुस उसका पहला अध्याय और उसके सातवें वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं.
He says the one more powerful than I am is coming after me.
और वो कहता है मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है.
I am not worthy to bend down and untie the strap of his sandals.
मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं.
Here I could really understand the humble attitude, the way he put down himself.
और यहाँ मैं उसकी वो नम्र स्वभाव को देख पाता हूँ कि कैसे वो अपने आप को कम या निचले स्थान पर रख रहा था.
In reality today,
आज वास्तविकता में,
never will anyone will like to touch other sandals.
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के जूतों को स्पर्श करना पसंद करता हो.
You know, even when we travel or when we go somewhere, like even if someone's sandal touches, you find people getting angry at us and they look with a different eye at us.
और हम जब कभी कहीं यात्रा कर रहे हैं तो किसी का पैर भी अगर किसी और व्यक्ति को छू जाता है तो हम देखते हैं कैसे लोग क्रोधित हो जाते हैं.
Yes, and it is really something which no one will like you know to touch one's shoes or sandal.
और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि किसी और व्यक्ति के जूतों को हाथ लगाया जाए।
दिस इज द लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी आई नीड टू लर्न।
और इस प्रकार की नम्रता मुझे सीखनी है।
यू नो हियर आई सी जॉन द बैप्टिस्ट, यू नो इवन ही इज स्टेपिंग डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन एंड हैंडिंग ओवर टू द लॉर्ड एंड ही इज टेलिंग द वन हु इज कमिंग ही इज मोर ग्रेटर।
और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का जो पद था वो उससे नीचे आकर कह रहा है मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे अधिक महान है।
Stepping down from position.
वो अपने जो स्तर है, अपना जो पद है, उससे नीचे उतर रहा है।
You know, people having great crowd and great people following, you know, there you see like where he is giving out his position is telling it's not me, it is the one who is coming.
और ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ जाती थी और यहाँ ये व्यक्ति कह रहा है मैं नहीं, मेरे बाद जो आएगा वो महान है।
Here we see that he is not having the attitude of self-seeking, but he is having a attitude of self-denial where he is giving himself and submitting himself to the Lord.
और यहाँ हम देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अपने आप की खोज करना नहीं है, बल्कि वो खुद को त्याग कर परमेश्वर की खोज कर रहा है।
Yes, and as yesterday also we heard about one verse from Philippians chapter 2 verse 3.
और कल भी हमने एक वचन को पढ़ा, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और तीसरा वचन।
There it is written, do nothing from selfishness or empty conceit.
और वहाँ लिखा है कि विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो।
But then he says, but with humility and of mind regard to one another as more important than yourself.
पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो।
Here I need to check myself or have a check in myself.
मुझे अपने आप को परखने की जरूरत है।
Am I really having an attitude of self-seeking?
क्या सचमुच मैं बस स्वयं को ही खोजता रहता हूँ?
Or whether I'm really having a heart of humility or a mind to regard others as important as myself?
या सचमुच मेरे अंदर वो दीनता का स्वभाव है कि मैं दूसरों को अपने आप से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ।
And later on in Philippians chapter 2 verse 5,
और आगे फिलिपियों 2:5 में,
there actually it is what kind of attitude I need to have, the answer is there.
और वहाँ इस प्रश्न का उत्तर है कि मेरे पास कैसा स्वभाव होना चाहिए।
Attitude in yourself which was also in Christ Jesus, which was in my Lord.
एक ऐसा स्वभाव जो यीशु मसीह में था, मेरे प्रभु में था।
That is to know my Lord more and live according to what my Lord Jesus has lived.
इसका मतलब मैं अपने प्रभु को और नजदीक से जानता हूँ और उस प्रकार जीता हूँ जैसा मेरा प्रभु जीता था।
You know, one more thing which I learned is,
एक और चीज जिसको मैंने सीखा,
It is about Jesus.
ये यीशु के बारे में।
It is like how he displayed himself as a servant.
कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को एक दास के रूप में प्रदर्शित किया।
We can read about it in John chapter 13 verse 3.
और हम इसको यूहन्ना उसके 13 और उसके तीसरे वचन में पढ़ते हैं।
You know over there Jesus about Jesus it is written like this.
और यहाँ यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार लिखा है।
Knowing that the Father has given all things into His hand,
ये जानकर कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में दिया था,
He had everything in His hand. He had the power in His hand.
सब कुछ उसके हाथ में था, उसके हाथ में सामर्थ्य था.
If He wanted, He could rule like a king.
अगर वो चाहता, तो एक राजा के समान वो राज कर सकता था.
He could get His commandments done by His powers, by His authority.
उसके सामर्थ्य से, उसके अधिकार के द्वारा वो जो कुछ चाहता उस चीज को कर ले सकता था।
But he did not do that, but he wanted to fulfill the plan of the Father.
पर उसने ऐसा कुछ भी ना करना चाहा, उसने हमेशा पर पिता की इच्छा पूरा करना चाहा।
And there in John chapter 13 verse 12 onwards we read like this.
और यूहन्ना उसके 13वें अध्याय में 12 से आगे वचनों में हम ये पढ़ते हैं।
You know, there we see that he washed their feet.
और वहाँ हम देखते हैं कि यीशु ने उसके शिष्यों के पांव धोए।
You know, he came to he showed that man, he displayed that manner of humility, you know, by washing their feet.
उसने इस प्रकार की नम्रता दिखाई कि उसने अपने शिष्यों के पांव को धोया।
And there he said, "Do you know what I have done to you?"
और फिर वो कहता है, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है?
Yes, there is telling that I need to understand what Jesus has done.
और मुझे इस बात को समझना जरूरी है कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है।
You know, it is again the display of humility which Jesus displayed, that I should learn from him, and I should not only learn in that same spirit, I need to display it or I need to do it.
यहाँ फिर एक बार यीशु मसीह ने उसकी नम्रता को इस प्रकार प्रदर्शित किया जिसका मुझे अनुसरण करना है और मुझे भी उसी प्रकार जीना है।
I don't think so. Person in a great authority in today's world would ever do a thing like this.
मैं नहीं समझता आज इस जगत में एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसा अधिकार हो वो कभी ये चीज कर सकता है।
Yes, he will never humble himself like the way our Lord Jesus Christ humbled himself or did a work like this.
वो कभी भी अपने आप को उस प्रकार नम्र नहीं करेगा जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया।
And in verse 14 of John 13 verse 14 it says,
और यूहन्ना उसका 13 उसके 14वें वचन में ये लिखा है,
there he says, you also ought to wash one another's feet.
और वो लिखता है तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए।
When he tells like this, what I understand it is how I put myself down and in what attitude I perform that.
और इस वचन से जिस चीज को मैं समझता हूँ वो ये है, मैं किस प्रकार अपने आप को नम्र करके या निचला स्थान लेकर निचला स्थान लेता हूँ।
Yes, and what I need to do is I need to really do it the way Lord Jesus has done.
और मुझे हर कोई चीज इस प्रकार करनी है जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह करता था।
Yes, it is in verse chapter 13 verse 15.
और यूहन्ना 13 उसका 15 वचन.
There he says, you know, that I need to be an example as I did to you.
क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो.
Yes, I need to be an example like Jesus Christ. I need to take that and it is every day I need to learn about it.
और मुझे यीशु मसीह के समान उसके नमूने को देखकर खुद भी एक उदाहरण होना है और उसी प्रकार जीना है।
And it is not like one day or it is not like at some times that I show that I display that.
और ये ऐसा नहीं कि किसी एक दिन मैं ऐसा करता हूँ या अलग-अलग दिनों पे कुछ समय मैं ऐसा इस प्रकार जीता हूँ।
It is like carrying the cross daily, which in the same manner I have to display the qualities which Jesus has shown. I need to do it every day.
जिस प्रकार अपने क्रूस को मुझे हर दिन उठाना है, उसी प्रकार जैसा यीशु जीता था, उसी स्वभाव में मुझे हर दिन जीना है।
And one thing I realized that it cannot come out through myself by its own way. It cannot come out just like that.
और एक चीज मैं भली भांति समझ गया हूँ कि इस चीज इस प्रकार का जीवन मेरे अपने यत्नों से बाहर नहीं आता।
Because for that humbleness which has to come out, it can only come through the power of the Holy Spirit which God gives us.
क्योंकि इस प्रकार की नम्रता तभी हम में उत्पन्न होती है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु हमें देता है।
In Matthew chapter 11 verse 29.
मत्ती उसका 11 और उसका 29 वचन.
We all know this verse.
हम सब इस वचन को भलीभांति जानते हैं.
There he is telling you, learn from me.
और वहाँ वो कहता है मुझसे सीखो.
I am gentle and humble and in heart.
मैं नम्र और मन से दीन हूँ.
This is what our God is, and I need to learn from my Lord.
और ये मेरे प्रभु का स्वभाव है और मुझे अपने प्रभु से सीखना है.
And I need to have that heart and that mind to go to him when I need to learn.
और ये मेरे अंदर एक हृदय होना चाहिए, एक सीखने की मंशा होनी चाहिए जब मैं अपने प्रभु के पास जाता हूँ.
It is only in his feet I can learn.
ये सिर्फ उसी के चरणों में बैठकर मैं सीख सकता हूँ.
And another thing is in James chapter 4 verse 6. If I am proud, what happens? The opposite to that we can read there.
और एक दूसरी चीज जो है वो है याकूब उसका 4th अध्याय और 6th वचन. अगर हम घमंडी हैं, अभिमानी हैं, तो क्या होगा?
This is what I said earlier also, when I am proud, God will oppose. He will not even make me to stand in front of him.
और यही बात मैंने शुरुआत में भी कही थी कि अगर मैं घमंडी हूं या अभिमानी हूं तो प्रभु मेरा विरोध भी करेगा और मुझे उसके सामने खड़ा तक नहीं करेगा।
I will have no place in front of my Lord when I display my proud attitude and I display when I display myself in this spirit.
जब मैं घमंडी होकर अपने आप को प्रदर्शित करता हूं या एक घमंड का आत्मा मेरे अंदर है तब मैं प्रभु के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता।
But one thing he says that you know that he gives a greater grace.
पर वहां लिखा है कि वो दीनों पर अनुग्रह करता है।
It's not little grace. It is written like this. He gives greater grace.
और यहाँ सिर्फ थोड़ा अनुग्रह नहीं बल्कि अधिक अनुग्रह परमेश्वर देता है ऐसा लिखा है।
Yes, he gives that greater grace to the humble.
और प्रभु इस प्रकार का अनुग्रह अधिक अनुग्रह सिर्फ दीनों को देता है।
This is what I need to seek and want to learn every day in my life to receive that attitude.
और इसी चीज की मैं खोज करना चाहता हूँ और हर दिन अपने जीवन में इस प्रकार के स्वभाव को मैं स्वीकार करना चाहता हूँ।
And finally, one thing which James says in verse chapter 4, verse 10.
और एक अंतिम बात जो याकूब कहता है, याकूब की पत्री चौथा अध्याय और उसका दसवां वचन.
He says, for all that you have to do only one thing.
और याकूब कह रहा है कि इन सारे चीजों के लिए तुम्हें बस एक ही चीज करनी है.
He says, humble yourself in the presence of the Lord.
प्रभु के सामने दीन बनो.
He will exalt you.
तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा.
Yes, God is there to exalt us when we really humble ourselves, or when I humble myself in front of the Lord.
और सच कुछ परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा अगर हम उसके उपस्थिति में अपने आप को नम्र करें तो.
In the name of my Lord Jesus Christ, Amen.
यीशु मसीह के नाम से आमीन.
So this is one thing which I have been thinking about for since last few months.
और पिछले कुछ महीनों में ये एक चीज है जिसके बारे में मैं विचार करता रहा हूँ।
Like we also heard yesterday from Brother Zach that when we are humble, we can grow spiritually.
और जैसे हमने कल भी भाई जैक से सुना कि अगर हम नम्र हैं, तो हमारी आत्मिक उन्नति या बढ़ोतरी हो सकती है।
We can only learn humility from Jesus Christ.
हम नम्रता केवल यीशु मसीह से ही सीख सकते हैं।
And Jesus Himself said, I am humble in heart.
क्योंकि यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा कि मैं मन में दीन हूँ।
So that is what I need to learn more. Not humility in external things, but humility in my heart.
और इसी चीज को इसलिए मुझे सीखना जरूरी है। मेरे बाहरी चाल चलन में नम्रता नहीं, बल्कि मेरे मन के अंदर दीनता।
That means what I think in my mind and in my heart, that is important.
इसका मतलब मैं अपने मन में अपने हृदय में किन चीजों का विचार करता हूँ वो जरूरी है।
As we heard even yesterday from Philippians chapter 2,
जैसे कल भी हमने सुना फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय से।
Just go to that. Philippians chapter 2, verse 3. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourself.
फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय और उसका तीसरा वचन, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो।
That means here it says I have to regard every person as more important than myself.
यहाँ लिखा है कि मुझे दूसरे हर एक व्यक्ति को मुझसे खुद से ज्यादा महत्वपूर्ण समझना है।
So in the body of Christ, if I can do that, I'll be a very useful brother in the church.
अगर मैं मसीह के देह में इस बात को कर सका, तो यीशु मसीह के कलीसिया में मैं बहुत ही एक उपयोगी भाई ठहरूंगा।
That means I consider all the brothers in the church as more important than me.
इसका मतलब है कलीसिया में जितने भी और भाई हैं, मैं समझता हूँ कि वो मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
And I am ready to wash their feet as we heard.
और जैसे हमने सुना, मैं उनके पाँव तक धोने के लिए तैयार हूँ।
One thing which we need to learn about pride is what Jesus said in John chapter 5 and verse 44.
हमें घमंड के बारे में एक चीज सीखनी जरूरी है जो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय और वर्स
44
वचन
इट सेज हाउ कैन यू बिलीव व्हेन यू रिसीव ग्लोरी फ्रॉम वन अनदर एंड यू डू नॉट सीक द ग्लोरी दैट इज फ्रॉम वन एंड ओनली गॉड
तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते किस प्रकार विश्वास कर सकते हो
सो इफ इन माय हार्ट आई एम ऑलवेज सीकिंग फॉर ए ग्लोरी और सम एप्रिसिएशन और समथिंग व्हिच अदर्स विल गिव मी आई कैन नॉट बी हंबल
और अगर मेरे मन में हर समय इसी बात के मैं खोज में हूँ कि बाकी लोग मेरी प्रशंसा करें या कुछ मुझे दूसरों से आदर प्राप्त हो तो मैं कभी भी नम्र नहीं हो सकता
That is why we read that do nothing out of selfish ambition or empty conceit.
और इसलिए हमने फिलिपियों में पढ़ा कि जो झूठी बड़ाई है उसके द्वारा कुछ भी काम नहीं करना
That means if I am sharing a word, it should not be with an intention that people should respect me or people should say it's a nice word or something. With that intention, if I have, then it's an empty conceit.
अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ या वचन बांट रहा हूँ तो मुझे एक ऐसे इच्छा से नहीं करना है कि लोग मेरा आदर करें, लोग आकर मेरी प्रशंसा करें कि वचन बहुत अच्छा था।
I should not seek glory from one another.
हमें एक दूसरे से आदर या महिमा को प्राप्त नहीं करना है।
And that is how that is something which I am also working out in my life. And every time I share the word, I go before God and I ask God, "Am I seeking honor?" And sometimes God still shows it to me that there was honor seeking in my heart.
और ये एक चीज है जो आज भी मैं अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता हूँ और कई बार प्रचार करते वक्त मैं प्रभु के पास जाके बोलता हूँ कि प्रभु क्या अभी भी मैं आदर के लिए आदर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रभु दिखाता है कि कभी मैं आदर प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ।
So this is not something which we can say that I have completely got rid or I am no longer proud. There are some cases where we are still having pride in us and we need to judge ourselves constantly.
और इसलिए ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम आसानी से कह दे कि मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है। हमारे जीवन में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हम आज भी घमंडी हैं और हमें हर समय अपने आप को परखना और जांचना है।
One more thing which I was very much encouraged is from Luke chapter 10 verse 20.
एक और वचन जिससे मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और वचन 20।
It says, Nevertheless, do not rejoice in this that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven.
तो भी इसलिए आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं
सो व्हाट दिस मींस इज आई शुड नॉट रिजॉइस इन एनीथिंग आई हैव डन फॉर द लॉर्ड
इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई भी चीज में मुझे आनंद नहीं करना है जो मैंने प्रभु के लिए की है
हैज गॉड यूज्ड मी टू ब्लेस वन ब्रदर इन द चर्च आई शुड नॉट रिजॉइस थिंक ओवर इट मेडिटेट ओवर इट एंड रिजॉइस इन इट
क्या परमेश्वर ने मेरे द्वारा कलीसिया में किसी भाई को आशीषित किया है मुझे उस बारे में सोचना नहीं है मनन नहीं करना है उस पर आनंद नहीं करना
Jesus said when you give something or when you pray or when you give something to someone your left hand should not know what your right hand is doing
यीशु मसीह ने कहा अगर तुम किसी व्यक्ति को कुछ दे रहे हो तो तुम्हारे दाहिने हाथ को ये बात पता नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे दाएं हाथ ने क्या दिया है
That means I should do with the spirit of I immediately forget What I have done.
इसका मतलब मेरे अंदर ये आत्मा होनी चाहिए कि मैं जो कुछ करता हूँ मैं तुरंत उसको भूल जाता हूँ।
It's a conscious decision which I take that I will forget it. I will not bring that into my mind.
और ये एक निश्चय है जो मुझे करना है कि मुझे इस बात को बार-बार मेरे मन में नहीं लानी है।
So that is how I learn humility from Jesus.
और इस प्रकार मैं यीशु मसीह से नम्रता सीखता हूँ।
We read in Matthew chapter 12.
Verse 18.
We read in verse 19, He will not quarrel nor cry out, nor will anyone hear his voice in the streets.
और 19वें वचन में लिखा है वो ना झगड़ा करेगा ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा
That means we see the life of Jesus. It sometimes amazes me that the Son of God who lived a perfect life. And he kept the word of God from his childhood. He was so happy to be at home for first 30 years of his life.
और इस बात को सोचकर मैं कई बार आश्चर्यचकित होता हूँ कि परमेश्वर का पुत्र जो पूरी तरीके से निष्पाप और परिपक्व एक जीवन उसने जिया, वो अपने जीवन के पहले 30 साल तक घर में रहने के लिए संतुष्ट था।
He was happy to be happy to just do what his father wanted him to do।
और वो इसी बात से खुश या प्रसन्न था कि परमेश्वर जो उसका पिता जो उसे करना चाहता है उसी को वो करता था।
We see sometimes in the church or in some sometimes not in our church but in some churches where people are trying to grab the place to preach or place to do something. I want to do this. I want to lead this. I want to lead the singing. I want to lead. So there was so much fight, but Jesus, he was so humble that he could wait for the Father's time for 30 years.
और कई बार हम कलीसियाओं में देखते हैं कि लोग इतने उतावले होते हैं कि उनको कलीसिया में एक सेवकाई चाहिए या उन्हें प्रचार करना है या कुछ करना है, पर हम यीशु मसीह की नम्रता को देखते हैं कि वो रुकने के लिए इंतजार करने के लिए तैयार था कि उसका पिता उसको जब उसका समय देगा।
And also it's not just in preaching, some might not have any interest in that, but it's also in other aspects where we see pride.
और ये सिर्फ प्रचार करने में नहीं, शायद ऐसे लोग हैं जिनको प्रचार करने की बिल्कुल भी मंशा नहीं है, पर हमारे जीवन के दूसरे कुछ क्षेत्र हैं जहां हम घमंड को देखते हैं।
We see it when people tell us something we do not like.
हम अपने अंदर के घमंड को तब देखते हैं जब लोग हमें कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो हमें पसंद नहीं होती।
और whom we do not find it comfortable or they rub us in a wrong way.
या हम ऐसे लोगों के साथ जीते हैं जिनके साथ रहना हमें बहुत अच्छा नहीं लगता या हर समय वो हमें किसी न किसी अलग बात पे टोकते हैं।
और they are not behaving in a way which is good for us or we feel good.
या वो इस प्रकार से जीते नहीं या उनका स्वभाव ऐसा नहीं है जो हमें अच्छा लगता है।
And God many times puts us in such situations in a place of work and at home reveal lot of our pride.
और परमेश्वर कई बार हमारे काम करने के स्थल में, हमारे परिवारों में, हमें ऐसे परिस्थितियों में रखता है ताकि वो हमें अपने घमंड को दिखाए।
So the only thing I can do at that time is not to act humble, but to come to Jesus.
और एक ही चीज है जो मैं इस समय कर सकता हूँ कि मुझे नम्रता करने का ढोंग नहीं करना है बल्कि मुझे यीशु मसीह के पास आना है।
The greatest pride is to act humble.
सबसे बड़ा घमंड यही है कि हम नम्रता का ढोंग करें।
And that's how we will be proud of our humility.
और इस वजह से अगर हम ऐसा ढोंग करेंगे तो फिर हमें अपने नम्रता का घमंड होगा।
That is why Jesus said in Matthew chapter 11 and verse,
और इसलिए 28 onwards. 11 में कहा?
In verse 28 onwards, he said, "Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest."
और मत्ती 11:28 से आगे यीशु कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. And you will find rest for your souls.
मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे।
This is the rest we should all long for.
और ये एक विश्राम है जिसकी हर समय हमें एक खोज होनी चाहिए।
This we will receive when we are truly humble in heart.
और इस विश्राम को हम तभी ग्रहण करेंगे जब हम सचमुच मन में दीन होंगे।
So then, when I am at rest that way, then people insulting me or people praising me, I am, my heart is still and there is no difference it makes in my life.
और फिर अगर मैं इस प्रकार के विश्राम में प्रवेश करता हूँ, फिर भले ही लोग मेरा अपमान करें या लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे अंदर ये विश्राम से मैं नहीं हटूंगा।
So I have not come to that rest yet.
मैं इस विश्राम में अब तक प्रवेश नहीं किया हूँ।
But I know that Jesus has promised it for me.
पर मेरा ये विश्वास है कि यीशु मसीह ने इस विश्राम का मुझे अभिवचन दिया है, प्रतिज्ञा दी है।
That means the praise and the appreciation of people or the criticism of people, it will be complete rest. There will be not a single thing which moves in my heart when people appreciate me or criticize me.
इसका मतलब भले ही लोग मेरी स्तुति करे, मेरी प्रशंसा करे, या लोग मेरी आलोचना या निंदा करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसके वजह से मेरा मन थोड़ा भी विचलित होगा.
But this is not a yogic type or a yoga type of self-control which we put in our spirit and we try to manage ourselves.
पर ये ऐसा नहीं है कि हम योगा करके या उस प्रकार का खुद पर ऐसा नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही आत्मा के अंदर.
This is partaking of the nature of Jesus, which is truly humble.
ये है यीशु मसीह के स्वभाव का सहभागी होना, जो स्वभाव से ही नम्र है.
So I don't have to tell a cat that come on, do yoga or do something so that you will be clean or do something like that.
और मुझे बिल्ली को ये कहना नहीं पड़ता कि तू योगा कर या तू ऐसा कुछ कर जिससे तू स्वच्छ रहने की कोशिश करेगी.
It is a nature of the cat to be clean.
और उस बिल्ली का ये स्वभाव है कि वो अपने आप से स्वच्छ रहना पसंद करती है.
So that is how I want a nature in me that I am automatically humbled by the humility of Jesus.
और इसलिए मुझे भी अपने अंदर ये स्वभाव चाहिए कि मैं अपने आप यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा नम्र होता हूँ.
Let us seek that eternal life, that is knowing God, knowing Jesus in a personal way and daily walking with Him so that we receive that humility.
और आइए हम इस अनंत जीवन के खोजी बने, जो अनंत जीवन यीशु मसीह को जानने से आता है, और हर दिन उसके साथ चले और इस नम्रता को खोजे.
So this is most important thing and most necessary things in my life, being humble in my heart and humble in spirit.
और ये बहुत ही मुख्य बात है जीवन के अंदर कि मेरे हृदय में, मेरी आत्मा के अंदर मैं नम्र बनूं.
I really thank God for God is speaking to me and each one of us.
और मैं परमेश्वर का इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं.
Today, here learning and growing in humility.
जैसे हमने सुना कि हमको कैसे नम्रता में, दीनता में बढ़ते जाना है.
Just learning is no use until as I grow. God wants me to grow in humility.
और परमेश्वर यही चाहता है कि मैं नम्रता के अंदर बढ़ते जाऊं.
The one verse is coming to my heart, which is challenging and also good to remember all my life.
और एक वचन जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरे जीवन भर में बहुत ही मुझे चुनौती देने वाला ठहरा है, ये वचन ये है.
Book of Zephaniah, chapter 2, verse 3.
और सफनिया की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय तीसरा वचन.
I wish to read a verse which has been speaking to me for many many years.
और एक वचन को मैं आपके साथ बांटना, पढ़ना चाहता हूँ, जिस वचन ने मुझे बहुत सालों से मेरे साथ बात किया है.
1 Peter chapter 5.
पहला पत्रस उसका पांच अध्याय
वर्स 5
वचन 5.
यू यंग मेन लाइकवाइज बी सब्जेक्ट टू योर एल्डर्स एंड ऑल ऑफ यू क्लोथ योरसेल्व्स विद ह्यूमिलिटी टुवर्ड वन अनदर फॉर गॉड इज अपोज्ड टू द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल.
और पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 5. इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है.
This something which God was speaking to me when I was very young, when I was a bachelor.
और जब मैं जवान था और नवयुवक था, तब परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात की.
So I used to take it to my heart that as a young person, I should joyfully submit to the authorities God has kept above me.
और तब जवान होने के नाते मैं बड़े आनंद के साथ इस बात को मैंने ग्रहण किया कि जवान होने के नाते प्राचीनों के अधीनता में आनंद से मुझे अपने आप को समर्पित करना है.
It is not someone else forcing upon me. It is my voluntary choice.
और ये ऐसी बात नहीं कि कोई मुझ पर जबरदस्ती थोपता है, लेकिन ये स्वेच्छा से मेरा चुनाव होता है.
So I used to desire and practice with from the depth of my heart, with all sincerity, I would seek to submit to the elders above me.
और सारी गंभीरता के साथ और सारी ईमानदारी के साथ पूरे हृदय की गहराई से मैं सारे यत्न को करता था कि मैं जो अधिकारी है उनके अधीनता में मैं अपने आप को सौंप पाऊं.
And I would do it joyfully, not because it is a necessity or a compulsion.
और ये मैं आनंद से कर पाता क्योंकि मैं बहुत ही इसको बहुत ही एक दबाव के साथ या जोर जबरदस्ती से नहीं करता.
In that being submitted to the people God has kept above me, it was something joyful for me, a joyful experience for me.
और परमेश्वर ने जिन अधिकारियों को मेरे ऊपर नियुक्त किया था उनके अधीनता में जीना ये मेरे लिए आनंद का एक अनुभव था.
After many years, another part of the same verse was revealed to me.
और बहुत सालों के बाद इसी वचन का दूसरा भाग जो है जो मुझ पर प्रकाशित किया हुआ.
Even though I had read this so many times, the only thing I knew is young people should be submitted to elders.
और यहाँ पर एक चीज जो मुझ पर प्रकाशित हुई, मैं यहाँ तक यही जानता था कि जो नव युवक है उन्हें अधिकारियों के अधीनता में रहना चाहिए.
So after many years, I noticed in the middle of it is written, and all of you, clothe yourselves with humility toward one another.
और वहाँ पे उस वचन के बीच भाग में लिखा है कि वरन तुम सब के सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो.
To me, earlier it was young people to elders.
और पहले मैं यही सोचता था कि यहाँ पर जवानों के लिए लिखा है जो प्राचीनों के अधीनता में उन्हें रहना है.
And now it is all of you, clothe yourselves with humility with one another.
लेकिन उसके बाद तुरंत वो कहता है कि अब सबके सब एक दूसरे की सेवा करने के लिए दीनता से कमर बांधे रहो.
So that was an understanding which I received after so many years of reading this scripture.
और ये वचन को बहुत सालों के बाद पढ़ने के बाद इस समझ को मैंने प्राप्त किया.
I need to learn to be in subjection to one another, even my peer or some other sources, not just the people above me.
और यहाँ पर केवल जो लोग मेरे ऊपर अधीन मेरे अधिकारी हैं उन्हीं के नहीं लेकिन मेरे आसपास जो और लोग हैं उनकी अधीनता में भी मुझे अपने आप को करना है.
Toward one another and all of you.
और एक दूसरे की सेवा के लिए एक दूसरे की अधीनता में अपने आप को समर्पित करना है.
And the reason is also very clearly written there.
और यहाँ पर उसका कारण जो है वो भी बहुत ही साफ रीति से लिखा गया है.
God is opposed to the proud.
और क्योंकि परमेश्वर जो है अभिमानियों का विरोध करता है.
I don't think there is such a strong verse, any other verse in the Bible, entire Bible.
और मैं नहीं समझता कहीं बाइबल के इससे कठोर या बहुत ही सख्त शब्दों में और कोई वचन पाया जाता हो.
We don't see God opposing an adulterer or a prostitute or a thief or anybody.
और हम कभी भी नहीं जाते नहीं देख पाते वचन के अंदर कि जहां परमेश्वर यीशु मसीह जो व्यभिचारी है या वेश्या है या चोर डकैत उनका वो सामना या विरोध करता हो.
But God is opposed to the proud.
लेकिन यहां पर कहता है परमेश्वर अभिमानियों का सामना या विरोध करता है.
So I don't think we can understand in a moment in an intellectual way.
और मैं नहीं समझता कि अपनी बुद्धिमानी से अपनी समझ चतुराई से हम इसे समझ पाएंगे.
But the earlier we understand in our heart, the better for us.
और जितना जल्दी हम इस वचन के भाग को अपने हृदय में समझ पाएंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए.
It is not just an intellectual understanding.
और ये केवल दिमागी एक समझ नहीं है.
God is opposed to proud people.
क्योंकि परमेश्वर जो है अभिमानियों के विरोध में खड़ा होता है.
Whether the pride is about our Bible knowledge or about our skills or our abilities, our able to communication skills, whatever it is.
और हमारी योग्यताओं के ऊपर हम घमंड करते होंगे, शायद वो बाइबल का ज्ञान हो सकता है, हमारी क्षमताएं हो सकती है या कुशलताएं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है.
The moment we are beginning to be proud, when God sees that we are becoming proud, God will oppose us.
और जिस क्षण परमेश्वर देखता है कि वो हम घमंड से या अभिमान से भर रहे तब परमेश्वर हमारा विरोध करना आरंभ कर देता है.
And also he gives grace to only humble people.
और केवल दीनों को नम्र लोगों को ही वो अनुग्रह देता है.
And without grace we cannot live a victorious Christian life.
और अनुग्रह के बिना हम एक मसीही जयवंत मसीह जीवन नहीं जी सकते हैं.
The simple meaning of word grace is help from God.
और अनुग्रह शब्द का एक बहुत ही साधारण जो मतलब जो होता है वो है परमेश्वर से मिलने वाली सहायता.
So it means God will help only humble people.
और इसका अर्थ यह होता है कि परमेश्वर केवल नम्र लोगों की ही सहायता करेगा।
So in any area, if we need to receive help from God, we have no other way but we have to humble ourselves.
और हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि हमें परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करना है तो और कोई दूसरा उपाय या रास्ता नहीं बजाय कि हम अपने आप को नम्र करें।
In the next verse is written, in verse 6, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, and he may exalt you at the proper time.
और वचन 6 में कहता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए।
So we need to learn to be humbled under the mighty hand of God.
और हमें सबसे पहले परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना सीखना है।
What really encouraged me is this verse, when we learn to be truly humbled before God.
और जब हम परमेश्वर के सामने सही रीति से नम्र बनना सीख जाते हैं, ये बात मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करती है।
It's only a matter, but God will exalt us or lift us up.
और ये कुछ समय की बात है जिससे वो उचित समय पर हमको बढ़ाएगा या ऊपर उठाएगा।
It's a matter of time.
और ये केवल समय है।
Because God has a time for everything.
क्योंकि परमेश्वर के पास हर चीज के लिए एक समय होता है।
proper time. There's a proper time for God.
और यहाँ पे लिखा है कि एक उचित समय पर परमेश्वर के पास हर एक परिस्थिति के लिए उचित समय होता है।
If you choose just to humble ourselves before God, God's on time, He will lift us up.
और यदि हम चुनाव करते हैं परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को नम्र करना, तो एक उचित समय पर परमेश्वर हमको उठाएगा।
So when you learn first humbling ourselves before God, we will also learn to humble ourselves with each other as well.
और जैसे हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को दीन करना सीखते हैं, उसके साथ साथ हम औरों के सामने भी अपने आप को नम्र या दीन करते हुए समर्पित करना भी सीखते हैं।
So I was thinking when there was a time when we were humbled.
और मैं सोचता हूँ कि एक समय था कि जब हम नम्र थे।
Why I said is there's a good example in the case in written in 1 Samuel 17 about Saul.
और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अच्छा उदाहरण है पहला समुएल की पुस्तक उसके 17 अध्याय के अंदर शाऊल के बारे में।
When Saul was humbled, God anointed him as the king of Israel.
और जब शाऊल बहुत ही नम्र था तब परमेश्वर ने इसराइल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया।
But later when he became proud and we took God's commands lightly, God removed him from that place.
लेकिन उसके बाद जब वो घमंड से भर गया और परमेश्वर की आज्ञा को बहुत ही हल्के से लिया, तो परमेश्वर ने उस स्थान से उसको निकाल दिया।
So Samuel the prophet was reminding Saul.
और शमूएल नबी जो यहाँ पर है राजा शाऊल को याद दिलाता है।
When you were humbled in your own eyes, God made you the king of Israel.
वो कहता है कि जब तू अपनी ही नजरों में बहुत ही नम्र था, तब परमेश्वर ने तुझे इस्राएल का राजा बनाया।
In the case of Saul, it was a history. He was once upon a time he was humbled.
और राजा शाऊल के मामले के अंदर वो एक इतिहास था क्योंकि एक बार वो पहले कभी नम्र हुआ करता था।
Then God made him king.
और जब परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था।
But when he became proud, God dethroned him.
और जब वो उससे घमंड से भर गया तो परमेश्वर ने उस सिंहासन से उसे दूर कर दिया।
Amen.
आमीन। Should I read, brother?
Yes, read.
Yeah. हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम की मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। यस ब्रदर।
आज वी रीड इन जेफनिया 2:3 ऑलरेडी दैट गॉड वाज स्पीकिंग टू द पीपल।
और यहाँ पर सफनिया की पुस्तक में जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि परमेश्वर कैसे लोगों से बात करता है।
द पीपल वर ऑलरेडी हंबल, ही स्पीकिंग टू द हंबल पीपल।
और यहाँ पर वो जो है नम्र लोगों से बातचीत करता है।
इट्स नॉट स्पीकिंग टू द प्राउड बट ही स्पीकिंग टू द हंबल।
और वो घमंडियों से नहीं, अभिमानियों से नहीं, पर नम्र लोगों से बात करता है।
So, further he says, to seek more humility.
और यहाँ पे लिखा है कि वो और अधिक नम्रता को ढूंढे।
So, here we understand that God's will is for me to be humble, to learn humility, and also not only learning, just to grow in humility as I learn.
परमेश्वर यही चाहता है कि वो हमें नम्र कर हम नम्र बने रहे, लेकिन उतना ही नहीं कि हम नम्र बने, लेकिन उस नम्रता के अंदर हम और अधिक बढ़ते जाए.
That God wants to me to grow in humility each day and every day in my life.
और परमेश्वर चाहता है मेरे प्रतिदिन के जीवन के अंदर मैं नम्रता के अंदर बढ़ते जाऊं.
It is easy to become humble before men.
और बहुत ही आसान होता है लोगों के सामने अपने आप को नम्र बनाना.
And also sometimes as we heard, we can act humble before people.
और जैसे हमने सुना कि जैसे हम लोगों के सामने दिखावा कर सकते हैं नम्र या दीन होने का.
But God through His Holy Spirit convicts us and He says that this is a false humility which is equivalent to pride.
और यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें बोध दिलाता है कि ये जो नकली जो हमारी नम्रता जो है वो एक घमंड के समान या बराबर है.
There are times that we have gone through this experience where God is speaking to us, that God challenging our to my heart sometimes.
और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अनुभव से हम गुजरते हैं जहाँ पर परमेश्वर हमारे मनों को हृदय को चुनौती देकर हमको बताता है.
And also looking to the people and comparing ourselves with the others, we cannot learn and also grow in true humility.
और हम लोगों को देखकर या अपने आप को उनसे अपने अपनी तुलना करके हम सही नम्रता में नहीं बढ़ सकते हैं.
The true humility only comes when I can look into Jesus as we heard and be yoked with him, learn from him.
और सच्ची नम्रता जो है वो केवल यीशु मसीह के पास से, जैसे वो उसके साथ एक समान उस जुए में जुड़ने के द्वारा ही उससे हम नम्रता को सीख सकते हैं.
The more I meditate about glory of Christ, more I meditate the love of Christ, the mercies, the kindness, that only will help me to learn and grow in humility like him.
और जितना अधिक मैं परमेश्वर की महिमा, उसकी दया और उसकी बातों के ऊपर मैं इतना अधिक मैं मन लगाऊंगा, उतना अधिक मैं उसकी नम्रता को और अधिक सीख पाऊंगा.
Today we heard about Job. Whenever people came into the presence of God and saw the glory of God, they just humbled themselves like Job.
और अय्यूब के बारे में देखा कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जब लोग आते हैं उसकी उपस्थिति में अपने आप को पूरी तरह से वो नम्र करते हैं. और
Even Isaiah, we can read in the book of Isaiah chapter 6 also, Isaiah, when he see the glory of God, presence of God, humbling himself.
और यशायाह के पुस्तक में हम देखते हैं जैसे परमेश्वर को उसकी महिमा में देखता है वो अपने आप को दीन और नम्र कर देता है.
Even John in the book of Revelation chapter 1, we see when he see the presence of God, glory of God, he just fall down before at the feet of Jesus.
और यूहन्ना के बारे में हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में देखते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा को जब वो देखता है वो पूरी तरह से उसके सामने दंडवत करके गिर पड़ता है.
Even when Peter saw the presence of Jesus and the glory of Jesus, when he saw the blessing of Jesus in Luke 5, he just fall down at the feet of Jesus, he humbled himself.
और वैसे ही पत्रस ने भी जब परमेश्वर की उपस्थिति महिमा को देखा उसकी आशीषों को तब वो पूरी तरह से परमेश्वर के सामने दंडवत करके वो भी अपने आप को नम्र करता है.
We can learn true humility only looking into Christ himself.
और हम सच्ची जो नम्रता है केवल यीशु मसीह के ऊपर उसकी ओर देखकर ही सीख सकते हैं.
Also we heard about how John the Baptist grew in humility.
और कैसे हमने अभी सीखा कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला उस नम्रता में बढ़ता.
John said, I must decrease, he must increase. That is how we grow in humility.
किस प्रकार यूहन्ना कहता है कि वो पर अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, इस प्रकार वो उस नम्रता में बढ़ते जाता है.
We know about Paul's life also. You grow in humility. We have learned and heard many times about Paul's life.
और हम पौलुस के जीवन के अंदर भी ये बहुत सारी बार इस बात को पढ़ते हैं.
Going God want me to learn and grow in humility is that is the only way he can give me grace as we hear today in book of James and Peter.
और जैसे याकूब और पत्रस की पुस्तक में क्यों परमेश्वर चाहता है कि उस नम्रता के अंदर मैं बढ़ता जाऊं, क्योंकि वही एक तरीका है जिसके द्वारा वह हमें अनुग्रह प्रदान करता है.
How to survive in this earthly life we need money, same way to grow in spiritual life without his grace I cannot grow.
और जैसे इस पृथ्वी के ऊपर हमें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वैसे वो आत्मिकता के अंदर मुझे अपने आप को बनाए रखने के लिए उसके अनुग्रह की जरूरत होती है.
Even he is willing to give his greater grace.
और यहाँ तक परमेश्वर इच्छा रखता है कि और अधिक और बड़ा अनुग्रह वो हमें दे.
The greater grace is like greater wealth to us.
और वही बड़ा अनुग्रह जो हमारे अंदर बड़े कार्य को करता है.
That's why that's the reason God wants me to learn and grow in humility so that he can pour out his grace upon me.
और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं उस नम्रता और दीनता में बढ़ता जाऊं ताकि वो अपना अनुग्रह मेरे जीवन पर उंडेल सके.
I just want to read one verse and end it.
और एक वचन को मैं पढ़कर समाप्त करूंगा.
Matthew chapter 18 verse 3.
Which sir?
Matthew chapter 18 verse 3.
मत्ती उसका 18 अध्याय उसका मैथ्यू 18:3 और उस और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे. और आमीन. परमेश्वर हमारी सहायता करे.
I will thank God for again, you know, like hearts, the thing of humility, you know, like it should be in our hearts, not just in our mouth.
का मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए. केवल वो हृदय की जो नम्रता जो हमारे अंदर होनी चाहिए उसके संबंध में.
The words that came to my heart were already shared by Brother Abu, you know, it was regarding Paul.
और जो वचन जो मेरे मन में आ रहा था जो भाई अबू ने भी बांटा वो वचन था शाउल के बारे में.
Saul was a really humble guy when he was chosen to be the king. And even he had the anointing of God and you know, the Holy Spirit, the Spirit of God came upon him.
जब राहुल शाउल को जब राजा होने के लिए चुना गया था बहुत ही नम्र था. उसका अभिषेक भी उसका किया गया था और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा.
See, when he lost his, when he became proud and he, you know, he didn't listen to God and he lost his, he fell to pride, he lost his anointing, what God has given to him.
और जब वो उस घमंड से भर गया और उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना उसने उस परमेश्वर के अभिषेक को खो दिया.
This is clearly says in the Bible when the spirit of God went away and the spirit of torment came into him.
और बहुत ही साफ रीति से वचन में लिखा है कि परमेश्वर का अभिषेक की आत्मा उससे दूर होकर एक उसको उसको एक परेशान करने वाली आत्मा उस पर आ गई.
It's the same thing if I don't have the humility in my heart, you know, I can also lose that fellowship with God.
और उसी प्रकार से यदि मेरे मन में मेरे हृदय में नम्रता नहीं तो मैं परमेश्वर के साथ उस संगति को खो दूंगा.
I'll be really held up in the worldly matters and worldly fears and things like that.
और मैं दुनिया की बातों के अंदर या भय दुनिया में जो पाए जाते हैं उन सारी बातों के अंदर अपने आप को ग्रसित कर लूंगा.
But when I stay with the Lord, then there's that fellowship with Him.
और जब मैं परमेश्वर के साथ बना रहूंगा उसकी संगति में वो संगति में रहूंगा.
As when Brother Zach was saying this, like, you know, Judas also was a good guy, you know, he didn't just because he just didn't choose him, but later on some things went wrong in his life.
और अब जैसे हमने भाई जैक से भी सुना था कि जिस प्रकार यहुन्ना यहूदा इस्कारियोत को चुना गया था वो पहले जो था वो अच्छा था लेकिन बाद में उसके मन में वो परिवर्तन या वो जो बुराई के रास्ते में हो गया.
This, and then we know what happened with the life of Judas, he committed suicide.
और हम जानते हैं यहूदा के जीवन के साथ क्या हुआ और वो अपने वो बाद में अंत में जाके आत्महत्या करता है.
The thing was he lost fellowship with God and then he couldn't survive later on.
और ये चीज यहाँ पर ये है कि उसने परमेश्वर के साथ उस संगति को खो दिया और वो अपने आप को नहीं बचा पाया.
He lost the fellowship of Christ.
और वो यीशु मसीह के साथ जो संगति थी उसको उसने खो दिया था.
And that was not bearable to him.
और उसको वो सहन करने के योग्य नहीं था उसके लिए वो.
But he realized what wrong he had done and he committed suicide.
और उसको पता चला कि उसने वो क्या किया है उसके बाद वो अपने आत्महत्या कर लेता है.
But God really he loves us, you know, he wants us to, you know, learn from us. We have heard all the brothers sharing about me, where Jesus said, you come to me and learn from me, you know.
और परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है वो चाहता है जैसे बहुत भाइयों ने आज बांटा यीशु मसीह के जीवन से कि यीशु के पास आकर हम उसे सीखे.
Jesus says you come and learn from me, you know, it's not from others but you learn because I lived that life.
और यीशु मसीह कहते हैं औरों से नहीं लेकिन मुझसे आकर सीखो क्योंकि मैंने वो जीवन को जिया है.
He was a broken man, he was broken in the situations, he learned from his life, you know, his humility.
और उसने उस जीवन से, उस टूटे हुए पन से, जीवन के उस नम्रता को यीशु मसीह ने सीखा था।
He lived that life. He lived that humble life throughout. He didn't just live for a moment, you know, or for a certain time, but that humility was constant from the start till the end.
और उसके जीवन में कोई छोटे क्षण के लिए, एक समय के लिए नम्रता नहीं थी, लेकिन निरंतर उसके जीवन में वो नम्रता उसने जीती है, उसने सीखा था।
So if we have want to have that same humility that will stay in our hearts and stay in our life, we have to learn from Christ.
और यदि वही नम्रता हमारे अंदर होनी, हमारे हृदय के अंदर, तो हमें उस यीशु मसीह से उसे सीखनी है। और यहाँ पर यीशु मसीह भी एक दृष्टांत देता है बीज बोने वाला का।
Like many give examples of that seed falling in many areas, you know, rocky ground, or you know, like with thorns. But it says when it fell in the good ground, it grew hundredfold.
और वहाँ पर यीशु मसीह उदाहरण में कहता है कि बीज बोने वाला अलग अलग भूमि में, कहीं पे कांटे होते हैं, कहीं पे पथरीली भूमि, लेकिन एक अच्छी भूमि पर वो बीज भी होते हैं जहाँ पर वो अनेक फल लेकर आता है। और उसी प्रकार हम हमारे मनों के अंदर, परमेश्वर हमारे हृदयों के अंदर उस वचनों को जो हम सुनते वो पनपने पाए और वो नम्रता जो है हमारे हृदय के अंदर पाई जाए।
God really help us in that. Thank you.
और परमेश्वर हमारी सहायता करे इन बातों में।
परमेश्वर के इस सुंदर से वचन के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा संक्षेप में आज के हमारे इस विषय के सिलसिले में, कि पहला पत्रस इसका तीसरा अध्याय और आठवां वचन, मुझे इससे काफी मिल खाता हुआ वचन लगता है, कि जिस वचन में ऐसा लिखा हुआ है पहला पत्र तीसरा अध्याय और आठवां वचन, कि अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे के प्रति प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। क्यों, अगर हम कलीसिया में हैं और संगति में है प्रभु के, तो हमें इन गुण विशेषणों की जरूरत हमारे जीवन में पड़ती है। और पत्रस इसी बारे में हमें सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति कृपा में, भाईचारा और प्रेम रखने वाले, करुणा के साथ में हम अगर अपने नम्र भाव के साथ में अगर रहते हैं, तो उस कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति है और प्रभु की आशीष है। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस कलीसिया में, इस संगति में, हाँ, प्रभु चाहते हैं कि इस तरह के आशीषें हमारे पूरे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे संगति में आए, क्योंकि ये वचन हम तक आया है। प्रभु चाहते हैं हमसे कि हम उनसे सीखें कि किस तरह से हम नम्र बन सकते हैं। और आइए प्रभु से मांगे कि वो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि इस भाईचारे में, इस प्रेम में हम उसके साथ में हमेशा नम्रता को सीखें और नम्र भाव से, ना ही कलीसिया में बल्कि अपने निजी जीवन में भी उस नम्र भाव के साथ में हम आचरण करें।